हे परमपिता परमात्मा, जीवन के रहस्य को मैं जान सकूं, उसमें प्रवेश पा सकूं और उसके परे मैं आपके साथ एकाकार का अनुभव कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद अभी हम तैतरीय उपनिषद पर जो बात कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। तैतरीय उपनिषद का जो पहला खंड है शिक्षावल्ली, वाय एडुकेशन, अभी तक उसमें कुछ बेसिक चीज़ों को हमने समझा है। सबसे पहली बात जो हमने जानी, क्या आवश्यकता है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है, कि कहा ब्रह्म विद्या उसका लक्ष्य है। ब्रह्म विद्या से क्या तात्पर्य है? द साइंस ऑफ सेल्फ, स्वयं को जान लेना, पूरी तरह से स्वयं को जान लेना। तो अपने सच्चे स्वरूप को समझ लेना, अपने पूरे फिजिकल बीइंग को, साइकोलॉजिकल बीइंग को, इमोशनल बीइंग को, स्पिरिचुअल बीइंग को, अपने पूरे अस्तित्व को उसकी पूर्णता के साथ समझ लेना, जान लेना, उसके अनुरूप अपने जीवन को निर्मित कर लेना। ये जो कला है, ये जो विज्ञान है, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। और कैसे हम इसको प्राप्त करें? हाँ, तो इसको कैसे करें, इसका क्या तरीका है? तो स्टेप बाय स्टेप इस ब्रह्म विद्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो हमने पांच जो शुरुआत के जो अनुवाक हैं उनमें एक छोटी सी प्रक्रिया के बारे में बात की। तो सबसे पहले क्या कहा कि जब हम ब्रह्म विद्या की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले भाषा की साधना की आवश्यकता होती है। भाषा की साधना कैसे करें, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। और भाषा जो है हमारे भीतर भी, भाषा कैसे प्रकट होती है, कि वाणी से प्रकट होती है। वाणी कहाँ से प्रकट होती है, कि हमारे भीतर जो है वो वैखरी वाणी है, मध्यमा है, पश्यंती है, परावाणी है। तो हम भीतर क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, वो जो हमारा सोच है, वो हमारा सोच जो है धीरे 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 विकसित हो जाता है। और फिर कहा कि कैसे सीखते, सीखना क्यों चाहिए, कि ब्रह्म विद्या के लिए सीखते कैसे हैं, कि सबसे पहले भाषा, भाषा के बाद वाणी, वाणी के बाद संधि, तीन चीज़ें हैं। भाषा की मास्टरी हो जाए, वाणी की मास्टरी हो जाए। वाणी का मतलब क्या है? विचार के तल पर हम कैसा सोच रहे हैं। और फिर तीसरी बात संधि, कि जब हम जुड़ जाएं, गुरु के साथ जुड़ जाएं, विषय के साथ जुड़ जाएं, जो करना चाहते हैं उसके साथ एकाकार का अनुभव करें, तो हम विद्या को, शिक्षा को ग्रहण करने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस प्रक्रिया को हम थोड़ा सा समझ चुके हैं। तो अभी क्या होगा, ये भी हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि क्यों करना चाहिए, कि हम इसलिए शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हम वो जो सोर्स है जिससे हम निकले हैं, ओंकार, जिसे ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, अमृतमय परमात्मा कहते हैं, मैं उसे अपने हृदय में धारण कर सकूं, मेरी जिहा जो है मधुभाषिनी हो जाए, बुद्धि जो है लौकिक बुद्धि में जो परमात्मा रूपी निधि जो छुपी है, तो लौकिक बुद्धि से ऊपर उठ जाऊँ और उसको मैं जान सकूँ। तो हमने इसको बहुत गहराई से इस पर बातें कर ली। मैं ना केवल अपने जीवन को का कल्याण कर सकूं, बल्कि जो ब्रह्मचारी हैं, जो दूसरे सीखने वाले हैं, उनके लिए आदर्श हो सकूं, उनके जीवन को निर्मित कर सकूं, उनको आगे बढ़ा सकूं, यशस्वी बन सकूं, धनवानों से भी अधिक धनवान बन सकूं, ताकि मैं आवश्यकता जिनको है उनकी मदद कर पाऊँ। और फिर क्या कहा कि मैं अपने आप को विशुद्ध कर लूँ। तो ये हमने अभी तक क्यों चाहिए शिक्षा, उस विषय पे थोड़ी सी बात की। थोड़ा सा और आगे अगर शिक्षावल्ली को ध्यान से देखें तो क्यों चाहिए शिक्षा, तो पांचवें अध्याय में और ध्यान से देखें तो वो कहते हैं कि एक बार ध्यान से देखो, भू भुह स्व, क्यों चाहिए शिक्षा। तीन लोक हैं, तो भू भुह स्व, ये तीन लोक कौन से हैं? भूलोक जिसे हम फिजिकल प्लेन कहते हैं, भूलोक जो इसके ऊपर का लोक है, जिसे हम साइकोलॉजिकल बीइंग या जो विचार का जगत है उसे हम कहते हैं, और स्व वह लोक जो ऊर्जा का लोक है, एनर्जी का लोक है। तो इशारा करते हुए कहते हैं कि जीवन जो है उसके अलग अलग तल हैं और उन तलों में हम जीवन को जीते हैं, हमको उसकी गहरी समझ प्रकट हो जाए। और ये जो तीन तल हैं, इन तीनों तलों को एक चौथा है जिसने धारण कर रखा है, जिसने इसको पकड़ रखा है, उस चौथे को भी हम समझ सकें, उसको भी हम जान सकें। और फिर कहते हैं देर आर 16 डिफरेंट लेवल्स, तो हम इन सब के अनुरूप जो है वो अपने जीवन को जी सकें, जीवन को उसकी पूर्णता के साथ हम जी सकें, ऐसा करने के लिए शिक्षा चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या समझना है, क्या जानना है, कैसी शिक्षा, फिर इसी को और डिटेल से बताते हैं छठे अनुवाक में। तो छठे अनुवाक में किसके बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं जीवन की ऊर्जा को संतुलित करने के बारे में, कि हमारे भीतर एक शिव है, हमारे भीतर एक शक्ति भी है। शिव जो है वो सोर्स है ऊर्जा का, शिव जो है वो सोर्स है आनंद का। तो वो जो शिव तत्व हमारे भीतर है और दूसरा शक्ति भी हमारे भीतर है। तो जो सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य का जो बीज है, दोनों एक साथ हमारे भीतर है। बहुत सारी अलग अलग कल्चर्स हैं, यान और यिंग के नाम से इसे जाना जाता है। ओह गॉड, तो दो तरह के जो ऊर्जाएं हमारे भीतर हैं, तो एक ऊर्जा जो सूर्य नाड़ी में प्रवाहित होती है, एक ऊर्जा जो चंद्र नाड़ी में प्रवाहित होती है, और इन दोनों का जब एक समागम होता है तो सुषुम्ना जो है वो जागृत हो उठती है। तो भीतर के जगत को हम समझ सकें, भीतर की जगत को हम जान सकें, इसलिए हमको शिक्षा की आवश्यकता है। हमारे भीतर जो ऊर्जा के 7 केंद्र हैं, जीवन कैसे चलता है, चेतना से चलता है। तो शिव जो है इस चेतना के रूप में हमारे भीतर समाहित है, हमारे जर्रे जर्रे में, हमारे रोम रोम में वो शिव जो है वो समाहित है, वो चेतना हमारे भीतर समाहित है। और शक्ति जो है वो इस चेतना को दिशा देती है, वो इस चेतना को जो है किस चीज की शक्ति देती है, शक्ति किस चीज की शक्ति, तो शक्ति जो है वो विचार की शक्ति है, भाव की शक्ति है, कर्म की शक्ति है, वो सृजन की शक्ति है, प्रेम करने की शक्ति है। तो शक्ति अनंत रूपों में हमारे भीतर है। और उसके बाद शिक्षा क्यों चाहिए, कि हम चेतना के जो तल हैं, 7 तल जो यहां बात की, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, तो हम ऊर्जा के इन चक्रों से गुजरते हुए चेतना के ये जो तल हैं इनसे हम ऊपर उठते चले जाएं। तो इसलिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये यहां पर समझाए, यहां इसकी आवश्यकता को स्थापित किया। फिर थोड़ा सा और आगे गए, क्यों जागृत करना है इन सारे ऊर्जा तलों को, क्या होगा इससे, इनको जागृत करने से क्या होगा। तो फिर थोड़ा सा समझाया कि जो जीव है वो स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेगा। जब हम ऊर्जा के निम्न स्तरों पर होते हैं तो हमको बहुत सारी लिमिटेशंस का अनुभव होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस में है, ये मेरे बस में नहीं है। और जैसे जैसे हमारे ऊर्जा के तल बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे क्या अनुभूति होती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये जो भाव है ये प्रबल होता चला जाता है। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप जो है शिक्षा क्यों चाहिए उसको एस्टेब्लिश किया, मन को आनंद देने वाली। तो और आगे जाके इसको जब गहराई से समझाते हैं तो कैसे बात करते हैं कि सारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की जो शक्ति है मैं उसको वश में कर सकूं, मैं मन का स्वामी बन सकूं, मैं वाणी का स्वामी बन सकूं, मैं अपने नेत्रों का स्वामी बन सकूं, मैं अपने कानों का स्वामी बन सकूं, मैं विज्ञान का स्वामी बन सकूं, इसलिए शिक्षा चाहिए। अब बताइए आज के टाइम में कौन कहता है कि मैं अपने मन का स्वामी बन सकूं इसलिए मुझे शिक्षा चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ अपनी वाणी का स्वामी बन सकूँ, इसलिए मुझे शिक्षा चाहिए। और अगर हम नहीं बन पाए मन के स्वामी तो इससे क्या कष्ट होगा बच्चे के जीवन में, हमारे जीवन में। हम अगर अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाए तो बच्चे कैसे कैसी तकलीफ से गुजरेंगे वो हमको पता है, हम जानते हैं उस बात को, हमने भुगता है उसको। तो मैं अपने नेत्रों का स्वामी हूँ, क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये मैं तय करता हूँ, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ये मैं तय करता हूँ, तो मैं उसका स्वामी हो सकूँ। ऐसा क्या विचार मेरे भीतर आएंगे और कौन से विचार मेरे भीतर नहीं आएंगे मैं उनका स्वामी बन सकूँ, इसलिए तो शिक्षा चाहिए प्रभु। सत्य स्वरूप हो सकूँ। तो दिस इज द कोर मोटिवेशन व्हाई एडुकेशन। सातवां जो अनुवाक है उस सातवें अनुवाक में एक और डायमेंशन के बारे में बात की, कहा कि जो मेरे भीतर प्राण की शक्ति है उस प्राण की शक्ति के प्रवाह को जान सकूं, उसे समझ सकूं, उसके साथ एकाकार कर सकूं। प्राण व्यान अपान उदान समान, ये पांच प्रकार की जो प्राण की शक्ति मेरे भीतर है, इन पांच प्रकार की प्राण की शक्तियों को मैं दिशा दे सकूं, मैं अपने आप को उसके लिए जागृत कर सकूं। तो यहां पर बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में बात की, तो अपने भीतर के जगत के बारे में भी बात की और बाहर के जगत के बारे में भी बात की, पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक स्वर्ग लोक सारी दिशाएं, पांच लोकों की बात की। इन पांचों लोकों को जो है मैं जान सकूं समझ सकूं, अग्नि वायु सूर्य चंद्र और सारे नक्षत्र, ये जो पांच प्रकार की ज्योतियां हैं उनको मैं जान सकूं, जल औषधि वनस्पति आकाश, तो और इनसे जो प्रकट होता है अन्नमय स्थूल शरीर मैं उसको जान सकूं, उसमें प्रवेश पा सकूं, पांचों प्राणों को जान सकूं, मैं नेत्र कान मन वाणी त्वचा इन पांचों करणों को जान सकूं, शरीर में जो पंच धातु हैं चर्म है मांस है नाड़ी है हड्डी है मज्जा है मैं इनको समझ सकूं। तो बहुत साफ साफ कहा कि तीनों तलों पर जीवन को जान सकूं, अधिभौतिक अधिदैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों तलों पर मैं जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकूं, ऐसा करने के लिए मुझे शिक्षा चाहिए। और फिर आठवें अनुवाक में क्या कहा, आठवें अध्याय में क्या कहा, क्यों चाहिए शिक्षा, कि वो जो ओम है वो जो ब्रह्म है वो जो परब्रह्म है जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है, जिससे सारे वेद प्रकट हुए हैं, जिससे सारे मंत्र प्रकट हुए हैं, जिससे सारी साधना प्रकट हुई है, जिससे सारा कर्म प्रकट हुआ है। तो यहां पर सब कुछ करने के बाद जो आठवां अनुवाक है उसमें क्या कहा, उसमें कहा कि जिससे सारा ज्ञान प्रकट हुआ, जिससे सारा भाव प्रकट हुआ, जिससे सारा कर्म प्रकट हुआ, मैं अपने कर्म को दिशा दे सकूं, इसलिए शिक्षा चाहिए, मैं अपनी भावनाओं को अपने हिसाब से दिशा दे सकूं, इसलिए मुझे शिक्षा चाहिए, और अपने विचारों की गति को देख सकूं और उन्हें इच्छित दिशा में जो है आगे बढ़ा सकूं, इसलिए मुझे शिक्षा चाहिए। तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन, व्हाई द पर्पस ऑफ एडुकेशन जो है उसको स्टैब्लिश किया, उसको बताया, और फिर कहा कि इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो पहले इसके पर्पस को समझाया, आज के एजुकेशन में यही मिसिंग है, हम बच्चे को बता ही नहीं रहे कि तुमको एजुकेशन क्यों चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा बताते हैं कि तुमको नीट क्लियर करना है, तुमको ये कंपटीशन क्लियर करना है, तुमको डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अरे तो इंसान कब बनेंगे और इंसान बनने की प्रक्रिया क्या है। इंसान बनने की प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति अपने मन को समझता है, अपनी वाणी को समझता है, अपने भावों को समझता है, अपने कर्म को समझता है, कर्म के परिणाम को समझता है, दूसरों को जानता है, इस जगत को थोड़ा जानता है। तो जब तक हम बाहर और भीतर को जानेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो यहां पर अब यहां से नौवें अनुवाक से बात आती है कि व्हाट इज द प्रोसेस हाउ टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करें कैसे, क्यों करें, ये तो समझा दिया, करें कैसे, कैसे प्राप्त होगा? तो पहले ही मंत्र में क्या कहा ज्ञान प्राप्ति के लिए? स्वाध्याय प्रशंसा। इस पहले ही नौवें अनुवाक में पहले ही कहा स्वाध्याय से होगा। अब ये स्वाध्याय क्या है? स्वयं का अध्ययन और स्वयं द्वारा किया गया अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्फ और सेल्फ स्टडी, दोनों को स्वाध्याय मिला दे। तो अभी उसको कैसे करना चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या है, शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया के बारे में जो है वो समझाया। तो उसमें क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले कहा कि उसके लिए सत्य भाषण चाहिए। सबसे पहले स्वाध्याय चाहिए, स्वाध्याय के बाद सत्य भाषण, सत्य भाषण के बाद तपश्चर्या, तपश्चर्या के बाद जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का दमन करना पड़ता है। ऐसे नहीं उनको दबाएंगे, दमन का मतलब दबाना नहीं है, दमन का मतलब यह है कि इंद्रियों को शक्ति देनी है, ताकत देनी है, उनको एक दिशा देनी है। और फिर मन का निग्रह चाहिए। अब ये चार चीज़ें अगर हम बच्चों को सिखा पाएं एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, काम ही हो गया। तो सबसे पहला क्या चाहिए? उन्होंने कहा सबसे पहली चीज़ जो है जब भी हम शिक्षा में प्रवेश करेंगे तो स्वाध्याय चाहिए, और स्वाध्याय के बाद सत्य भाषण, सत्य भाषण के बाद तपश्चर्या, इंद्रियों का दमन और मन का निग्रह। ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से गुजर के जब हम अध्ययन और अध्यापन की बात करेंगे तब जाके उस पर कमांड आएगा। और फिर थोड़ा सा कहा कि सदाचार चाहिए, बिना सदाचार के शिक्षा जो है वो आती नहीं, विद्या उतरती नहीं जीवन। और फिर सदाचार को भी समझाया आगे, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है। और फिर एक और महत्वपूर्ण बात, कैसे होती है शिक्षा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बहुत ही डायनेमिक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, और इस नौवें अनुवाक में कहा कि जब हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हम संस्कारित होते चले जाते हैं। संस्कारित मतलब हमारे भीतर संस्कार प्रकट होने लगते हैं। अब ये संस्कार शब्द जो है ना वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है, इतना हम इसको यूज़ करते हैं, इतना यूज़ करते हैं, ये बच्चा संस्कारी है, ये बच्चा संस्कारी नहीं है, संस्कार ही शिक्षा है, शिक्षा ही संस्कार है, इतना हम बोलते हैं, पर ये संस्कार है क्या? जीवन जब हम जीते हैं तो दो तरह से हम जीवन जीते हैं, एक जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस लिविंग, सचेत होकर के क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो हम बहुत कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं एंड देन वी डू समथिंग। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं? जो ऑटो पायलट मोड पे होती हैं। जैसे आपको किसी दिन ट्रेन पकड़नी है तो आप सोच के 3 बजे जगना है तो आप अलार्म भी लगाएंगे, दूसरी भी चीज़ें करेंगे और वो सब करेंगे, लेकिन आप सहज रूप से कितनी बजे उठते हैं अगर कोई आपको जगाए नहीं, कोई अलार्म बजे नहीं? वो जो सहज रूप से आंख खुलना है, जागना है, वो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट है, वो आपके अनकॉन्शियस का पार्ट है। वो सारी आदतें छोटी बड़ी, वो सारी आदतें छोटी बड़ी जो आप अनकॉन्शियसली करते चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड संस्कार। तो संस्कार शब्द का मतलब है अनकॉन्शियसली जो हम कर रहे हैं वो संस्कार। अब वो जो पैटर्न्स हैं हमारे सबकॉन्शियस में, वो जो पैटर्न्स हमारे अनकॉन्शियस में पड़े हैं जिनकी वजह से हम जीवन को जिए चले जा रहे हैं, ऑटोमेशन मोड में हमारे जो जीवन जब चलता है 90% 95% तक हम ऑटोमेशन मोड में जीते हैं, तो वो जो ऑटोमेशन है उसको क्रिएट करना, ऑटोमेटिकली हमारी आँख आज 5 बजे खुल जाए, 4:30 बजे खुल जाए ब्रह्म मुहूर्त में, ऑटोमेटिकली हम वो भोजन ग्रहण करें जो शरीर के लिए श्रेष्ठतम है, ऑटोमेटिकली हम वो सोचें जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो फील करें जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, इसको संस्कारित करना कहते हैं। तो कल के सत्र में हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।